लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे सृष्टि के संसाधनों के प्रति सम्मान और सुरक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा नहीं जाए, बल्कि न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से साझा किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं, बुधवार ये आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अवसर पर वेटिकन के संत दामासो प्रांगण में उपस्थित विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
कारी फ्रतेली ए सोरेले, बुंजोर्नो। ला क्रिसी के स्टियामो विवेंदो आ काउसा देला पांडेमिया कोल्पिशे तुत्ती।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। महामारी के कारण जिन कठिनाइयों का सामना हम कर रहे हैं, हम सबों को प्रभावित करती है। यदि हम सबों की भलाई का ख्याल रखते तो हम इससे बाहर निकल पाएंगे। दुर्भाग्यवश हम पक्षपातपूर्ण हितों को उभरता हुआ देखते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ हैं जो महामारी से बचाव हेतु अपने लिए उचित निदान वैक्सीन की चाह रखते हैं, कुछ हैं जो इस परिस्थिति से आर्थिक और राजनीतिक लाभ उठाने हेतु विभाजन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरे हैं जो दूसरों की तकलीफों से अपने को अप्रभावित पाते हैं और अपने ही दिनचर्या में लगे हुए हैं। इस महामारी के सामाजिक और आर्थिक परिणाम के संदर्भ में हम ख्रिस्तियों का प्रत्युत्तर प्रेम में आधारित है, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए प्रेम है। वे हमें शर्तहीन प्रेम करते हैं और जब हम उनके दिव्य प्रेम का स्वागत करते तो हम उन्हीं की तरह प्रेम करने के योग्य बनते हैं। संत पापा ने कहा,
आमो नो सोलो कि मी आमा ला मिया फैमिलिया मे अमीचे मियो ग्रुपो मां कि क्वेली के नो मी आमानो,
कि मैं केवल उन्हें प्रेम नहीं करता जो मुझे प्रेम करते हैं, मेरे परिवार, मेरे मित्र, मेरे दल, लेकिन मैं उन्हें भी प्रेम करता हूँ जो मुझे प्रेम नहीं करते, जो मुझे नहीं जानते या जो अपरिचित हैं, यहाँ तक कि उन्हें भी जो मुझे दुख देते या जिन्हें मैं अपना शत्रु समझता हूँ। यह ख्रिस्तीय मनोभाव यीशु ख्रिस्त के विचार हैं। यह पवित्रता का शीर्ष है, जिसे हम निश्चित रूप में कह सकते हैं कि सबों को प्रेम करना अपने शत्रुओं को भी अपने में कठिन है। यह सहज नहीं है, मैं इसे एक तरह की कला कहता हूँ, लेकिन यह वह कला है जिसे हम सीख सकते और इसमें बेहतर हो सकते हैं। सच्चा प्रेम हमें स्वतंत्र और फलप्रद बनाता है, तथा यह अपने में केवल विस्तृत मात्र नहीं बल्कि समावेशी भी है। यह प्रेम हमारी चिंता, चंगाई और भलाई करता है। बहुधा दुलार तर्क वितर्क से अच्छा होता है, यह क्षमा करता है जबकि तर्क अपनी सुरक्षा करता है। संत पापा ने कहा, अतः प्रेम दो या तीन व्यक्तियों के बीच या मित्रों या परिवार तक ही सीमित संबंध नहीं है, यह अपने में सामाजिक और राजनैतिक संबंधों को समाहित करता है। यह संबंध सृष्टि को भी अपने में आलिंगन करता है। सामाजिक और राजनीतिक प्राणी के रूप में प्रेम की अभिव्यक्ति मानवीय विकास से है, जहां हम सभी चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयार रहते हैं। हम जानते हैं कि प्रेम परिवार को विकसित करता है, वहीं हम इस बात को याद करें कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक संबंधों को भी विकसित करता और हमें प्रेम की सभ्यता का निर्माण करने में मदद करता है, जैसे संत पापा पॉल छठवीं और संत पापा योहन पॉलस द्वितीय कहा करते थे। प्रेम की इस प्रेरणा के बिना अहंकारिता, उदासीनता और फेंकने की संस्कृति बनी रहती है, अर्थात हम जिन चीजों से प्रेम नहीं करते या जो हमें व्यर्थ लगते हैं उन्हें हम फेंक देते हैं। संत पापा ने आम दर्शन समारोह में प्रवेश करते समय एक दंपत्ति से अपनी भेंट में हुई बातों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने अपंग संतान हेतु प्रार्थना करने का निवेदन किया, जिसके लिए वे अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। यह हमें प्रेम को दिखलाता है। हमें प्रेम की सभ्यता स्थापित करने की जरूरत है, जो सभी चीजों को अपने में ढक लेती है।
Il coronavirus ci mostra che il vero bene per ciascuno è un bene comune.
कोरोना महामारी हमारे लिए इस बात को व्यक्त करती है कि व्यक्ति की भलाई सबों की भलाई है, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो जन सामान्य की भलाई सही अर्थ में व्यक्ति की भलाई है। यदि व्यक्ति केवल अपनी भलाई की सोचता तो यह स्वार्थ है, वहीं यदि बहुतों की भलाई का ध्यान रखा जाता तो यह एक महान कार्य है जो सबों में प्रसारित होता है। स्वास्थ्य व्यक्ति की व्यक्तिगत अच्छाई के साथ सबों की भलाई भी है। एक स्वस्थ समाज सबों के स्वास्थ्य की चिंता करता है। एक महामारी किसी सीमा या संस्कृति या राजनीतिक भेदों को नहीं पहचानती है। हमें इसका मुकाबला प्रेम में बिना भेदभाव के साथ करने की जरूरत है। यह प्रेम प्रतियोगिता की भावना के बदले हमें सामाजिक स्वरूपों को तैयार करने में प्रोत्साहित करेगा, जिसके फलस्वरूप हम अति संवेदनशील लोगों को दरकिनार करने के बदले अपने साथ ले चलेंगे। वास्तव में जब हम प्रेम में सृजनात्मकता, विश्वास और एकता में बने रहते तो हम ठोस रूप में सामान्य भलाई हेतु पहल करते हैं। यह अति वृहद और लघुतम दोनों समुदायों के लिए वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर फायदेमंद होता है। वे चीजें जो परिवार, पड़ोस, गांवों, शहरों और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर की जाती सब एक ही हैं। एक ही बीज रोपा जाता जो बढ़ता और फलदायक होता है। यदि आप परिवार, पड़ोस में घृणा की शुरुआत करते तो यह अंत में युद्ध का कारण बनती है। वहीं यदि आप प्रेम, क्षमा से शुरू करते तो यह सबों में प्रेम और क्षमा प्रसारित करता है। संत पापा ने कहा कि यदि महामारी हम में स्वार्थ के भाव उत्पन्न करती, चाहे वह व्यक्तियों, व्यापारों या देशों में ही क्यों ना हो, तो हम कोरोना के कहर से बाहर तो निकल सकते हैं, लेकिन निश्चित ही मानवीय सामाजिक समस्याओं से निजात नहीं पा सकते हैं, जिन्हें कोरोना महामारी ने हमारे लिए प्रकाश में लाया है। अतः हम अपने निर्माण कार्य बालू में नहीं, वरन जन सामान्य की भलाई हेतु अपने स्वास्थ्य रूपी निर्माण कार्य शांतिपूर्ण समाज की नींव चट्टान पर करें।
E questo è compito di tutti noi, non solo di qualche specialista.
यह कुछ विशेषज्ञों का कार्य केवल नहीं, वरन हम सबों का कार्य है। संत थॉमस अक्विनस इसके बारे में कहते हैं कि सामान्य भलाई न्याय का एक कर्तव्य है जो हर नागरिक के ऊपर निहित है। हर नागरिक जन सामान्य की भलाई हेतु उत्तरदायी है। हम ख्रिस्तियों के लिए यह एक प्रेरिताई है। संत इग्नासियस लोयोला इसके बारे में कहते हैं कि हमें अपने प्रतिदिन के कार्य में जन सामान्य की भलाई सुनिश्चित करने की जरूरत है, जिसके द्वारा ईश्वरीय नाम की महिमा प्रसारित होती है। दुर्भाग्यवश राजनीति बहुधा अपने में ख्याति प्राप्त नहीं है और हम इसका कारण जानते हैं, लेकिन राजनीति अपने को इस नकारात्मक परिदृश्य पर ना छोड़े, वरन यह अच्छे कार्यों के द्वारा इस विचार का खंडन करे। वह मानव और उसके कार्यों को अपना केंद्र बिंदु बनाए जो अपने में संभव है।
I cristiani, in modo particolare i fedeli laici, sono chiamati a dare buona testimonianza di questo.
ख्रिस्तीय विशेषकर लोक धर्मी करुणा के गुणों को अपने में धारण करते हुए इस संदर्भ में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु बुलाए गए हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि यह सामाजिक प्रेम को विकसित करने का समय है, जहां सबों की सहभागिता जरूरी है। यदि हम सभी अपनी ओर से छोटा प्रयास करते हैं, यदि इसमें कोई पीछे नहीं रहता, तो हम सामुदायिकता के संदर्भ में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और यहाँ तक कि पर्यावरण के संग पुनः एकता का एक अच्छा संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस भांति अपने कार्यों, जो नम्रता में सबसे छोटा क्यों ना हो, हम में ईश्वरीय प्रतिरूप को प्रकट करेगा, क्योंकि ईश्वर त्रित्वमय है, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर के इस स्वरूप को प्रेरित संत योहन जिससे यीशु ख्रिस्त बहुत अधिक प्रेम करते थे, हमारे लिए धर्म ग्रंथ बाइबल में परिभाषित करते हैं। ईश्वर प्रेम है, उनकी सहायता से जन सामान्य की भलाई हेतु कार्य करते हुए हम विश्व को चंगा कर सकते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. मेरे प्यारे यीशु तू है प्रेमी दाता, सदा हमें सहारा देता, तेरी जय हो प्रभु। मेरे प्यारे यीशु तू है प्रेमी दाता,
रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 सितंबर को पहली बार सशस्त्र संघर्ष क्षेत्रों में हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। इस अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने युद्ध और आतंकवाद के कारण शिक्षा से वंचित सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना की अपील की। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान वाटिकन के संत दमासो प्रांगण में उपस्थित विश्वासियों को हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। संत पापा ने कहा, आज पहली बार सशस्त्र संघर्ष क्षेत्र में हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। मैं आपको उन छात्रों के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित करता हूं, जो युद्ध और आतंकवाद के कारण शिक्षा के अधिकार से गंभीर रूप से वंचित हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करता हूं कि वह इसकी पूरी कोशिश करे ताकि युवा छात्रों की रक्षा करने वाली संरचनाओं का सम्मान किया जाए। मानवीय प्रयासों की स्थितियों में इन सबसे ऊपर उनकी शिक्षा के लिए सुरक्षित वातावरण की गारंटी देने के प्रयास व्यर्थ नहीं जा सके। उधर संत पापा फ्रांसिस और स्लो फूड के संस्थापक पर्यावरण कार्यकर्ता कार्लो पेट्रिनी के बीच हुई 3 वार्तालापों की एक नई पुस्तक तेरा फुतूरा भावी पृथ्वी को प्रकाशित किया गया। इतालवी पुस्तक तेरा फुतूरा अभिन्न पारिस्थितिकी पर संत पापा फ्रांसिस और लेखक के साथ हुई वार्तालापों का संग्रह है। लेखक कार्लो पेट्रिनी वैश्विक स्लो फूड आंदोलन के संस्थापक हैं। उन्होंने 1980 के दशक में फास्ट फूड उपभोक्तावादी सांस्कृतिक और आर्थिक प्रवृत्ति के सामने क्षेत्रीय परंपराओं की रक्षा के लिए स्थापित किया था। यह भोजन और जीवन की शैली के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने हेतु विकसित हुआ है, जो व्यवहार, खाद्य उत्पादन और खपत, अर्थशास्त्र और ग्रह के बीच मजबूत संबंध को पहचानता है। पेत्रिनी की यह नवीनतम किताब संत पापा फ्रांसिस के निमंत्रण को बढ़ावा देने और एक विनाशकारी स्वरूप से निपटने और बदलने हेतु प्रोत्साहित करने की उनकी इच्छा से उपजी है। संत पापा फ्रांसिस अपने विश्व पत्र लौदातो सी में लिखते हैं, हमारी दुनिया में व्यापक रूप से सामाजिक और पर्यावरणीय अन्याय हुआ है और हमारे सामान्य गृह की देखभाल की आवश्यकता है। अभिन्न परिस्थितिकी की अवधारणा पर आधारित यह पुस्तक पेट्रिनी और संत पापा के बीच तीन सरल और मैत्रीपूर्ण व्यक्तिगत वार्तालापों पर आधारित है। उन्होंने पृथ्वी के प्रति सम्मान, उसकी उपज और संरक्षण के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता पर चर्चा की है। आपसी एकजुटता के माहौल में धरती की उपज सभी लोगों के जीवन और आजीविका के लिए मिले। उधर इंग्लैंड और वेल्स धर्माध्यक्ष सम्मेलन के लिए पर्यावरण के प्रमुख धर्माध्यक्ष जॉन ऑरलैंड ने सृष्टि के मौसम के बारे में और अपने धर्म प्रांत सल्फोर्ड में आम घर की देखभाल हेतु किए गए कामों के बारे में साझा किया। सृष्टि के मौसम के बारे में संत पापा फ्रांसिस ने कहा, यह हमारी प्रार्थना को प्रेरित करने वाला मौसम है, हमारी जीवन शैली पर विचार करने के लिए एक मौसम और एक मौसम भविष्यवाणियां करने के लिए, साहसी निर्णयों के लिए। पृथ्वी मृत्यु की ओर नहीं लेकिन जीवन की ओर निर्देशित करती है। पिछले सप्ताह पारिस्थितिकी विशेषज्ञों के एक समूह के साथ संत पापा फ्रांसिस ने इस तथ्य का स्वागत किया कि पारिस्थितिकी का मुद्दा तेजी से सभी स्तरों पर सोचने के तरीकों और राजनीतिक तथा आर्थिक विकल्पों को प्रभावित करने लगा है। भले ही वह कितना भी जल्दी किया जाए, हम अभी भी बहुत धीमी गति से कर रहे हैं। धर्माध्यक्ष जॉन अर्नोल्ड ने वाटिकन न्यूज के साथ हुए साक्षात्कार में बताया, पिछले दो वर्षों में धर्माध्यक्ष ने अपने प्रेरितिक पत्र में पल्लियों और स्कूलों को पर्यावरण संकट को और अधिक गंभीरता से लेने के लिए और अपने दैनिक जीवन में छोटे बदलाव लाने हेतु प्रेरित किया है। लौदातो सी की पांचवी वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए समग्र मानव विकास हेतु गठित परम धर्म पीठ के विभाग ने लौदातो सी का विशेष वार्षिक उत्सव शुरू किया जो 24 मई 2021 तक चलेगा। उन्होंने कहा, पल्लियों और स्कूलों में पर्यावरण और जैव विविधता जैसे मुद्दों के बारे में बताया जाता है। फिलहाल हम अपने कार्बन पदचिन्ह को मापने के उद्देश्य से एक परियोजना को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हम इंग्लैंड और वेल्स में अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की नीति का पालन करने के लिए उम्मीद कर सकें। उधर संत पापा फ्रांसिस ने आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के प्रेरितिक देखभाल के लिए 27 सितंबर को 106वीं विश्व प्रवासी और शरणार्थी दिवस के रूप में निर्धारित किया है। वार्षिक उत्सव के लिए संत पापा के संदेश का विषय वस्तु है, पलायन के लिए यीशु मसीह की तरह मजबूर। उनका चिंतन यीशु के अनुभव से प्रेरित है जिसने बचपन में अपने माता पिता के साथ विस्थापित शरणार्थियों का जीवन व्यतीत किया था। वाटिकन के प्रवासी शरणार्थी विभाग ने इस साल के समारोहों के पहले वीडियो की श्रृंखलाओं में पांचवी वीडियो जारी की है। इस नए वीडियो का शीर्षक है, बढ़ावा देने के लिए शामिल करें। वीडियो में फादर नोएल ने एक बच्चे के रूप में आंतरिक रूप से विस्थापित आईडीपी होने और अपना सब कुछ खोने का अनुभव साझा किया। वे बताते हैं, एक आईडीपी होने का मतलब है मैंने सब कुछ खो दिया, हमें सब कुछ नए तौर पर शुरू करना था। जब मैं सब कुछ कहता हूँ इसका मतलब रिश्ते, हमारी आजीविका, स्कूल, दोस्ती, सब कुछ शुरू से प्रारंभ करना था। फादर नोएल याद करते हैं, गरीबी के कारण उनका जीवन अन्य बच्चों के समान नहीं था। जब अन्य बच्चे खेलते थे तो उसे एक गोल्फ क्लब में काम करना पड़ता था, गोल्फ बैग को ढोना पड़ता था। फादर नोएल विस्थापित व्यक्ति के रूप में जीवन की कठिन अनुभव की याद करते हुए कहते हैं कि यह भी उनके बुलाहटीय जीवन का एक हिस्सा था। गरीबी के कारण उसकी माँ उसे घर से स्कूल भेजने में असमर्थ थी। उसे एक कैथोलिक गिरजाघर के पास ही एक बोर्डिंग स्कूल में रखा गया। यहीं उसे आध्यात्मिक जीवन को विकसित करने का वातावरण मिला और उसने पुरोहिताई जीवन का चुनाव किया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।